Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
De sakta hai. Isliye swapna ke padarth swapna mein hi kaam mein aate hain. Aur jagrat ke padarth जागृत के ही काम में आते हैं, इसलिए जागृत के पदार्थ परमार्थ के काम में नहीं आते। जागृत के पदार्थ कहां काम में नहीं आते? जब स्वप्न के पदार्थ जागृत में काम नहीं आएंगे तो जागृत के पदार्थ परमार्थ में काम में आएगा क्या? इतना जरूर है, जैसे स्वप्न संबंधी अज्ञान वो तो जागृत में आके बोलोगे, लेकिन सपने में जो चीज झूठी भी होती है उससे भी काम हो जाता है। सपने में आप सो रहे हो, शेर दिखाई देता है, नींद खुलती है कि नहीं खुलती है? अब सपने का शेर सच्चा है या झूठा? झूठे शेर ने भी आपके नींद तो खोल ही दी। बस यही जागृत झूठ होने पर भी परमार्थ को प्राप्त कराने में ये सामर्थ्य वाला है। है तो यह सब झूठा है, सब व्यवहारिक ही चलेगा। बाद में कहना यत्र वेदा अवेदा भवन्ति, न शास्ता न शास्त्रम, न शिष्यो न शिक्षा, न कोई शासन करने वाला, न कोई शास्त्र है, न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है, लेकिन उससे पहले सब मानना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो ये जो दो इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरितम करणेशु उपसंहृतेषु जागरित संस्कारज प्रत्यय सविषय स्वप्ना, तीसरी जो अवस्था है वो क्या है? सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूत सुखरूपमेति। वह जीव ईश्वर जो समष्टि कहलाता है सुषुप्ति अवस्था में, और व्यष्टि में प्राज्ञ जिसका नाम पड़ा, कुछ जगह कह दिया जो प्राज्ञ है वही ईश्वर है। ईश्वर और प्राज्ञ के बीच में जो औपाधिक भेद है उसको हटा दो, तो इसमें कुछ लोग शंका कर लेते हैं कि जब वही ईश्वर है तो ईश्वर का कार्य वो प्राज्ञ कर सकता है क्या? आप लोग कई वर्ष पहले ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय किए और कई वर्षों से अभी आप गीता के शंकरानंदी जी का तात्पर्य बोधनी के ऊपर स्वाध्याय कर रहे हो। ब्रह्मसूत्र में जब आता है ऐसा प्रसंग कि ज्ञान होने के बाद ज्ञानी उस ईश्वर से अपने को एक मानता है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्रादि में भी सिद्धे तद पुनरष्टधा परिणतम चैश्वर्यमव्याहतम। वह सिद्धे तद पुनः अष्टधा, आठ प्रकार की जो सिद्धियां है उसको प्राप्त कर लेता है। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यम ईशित्वम वशित्वम च अष्ट सिद्धया। ये अष्ट सिद्धियां है। सिद्धि होना एक अलग चीज है। अपने यहां जब सिद्धि की बात होती है अध्यात्म शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में, तो क्या है? संसिद्धिम लभते नरह। वह संसिद्धि क्या है? सम्यक सिद्धि। सम्यक सिद्धि का मतलब हो गया अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना। वेदांत में कोई चमत्कार को नमस्कार नहीं है, यहां तो चमत्कार से हटने की बात की जाती है। अज्ञान के कारण तो हम लोग वैसे ही अपने आप चमत्कारी बने हुए हैं। इस समय हम लोग कम चमत्कार करते हैं क्या? बनाते बनाते हम स्वयं बन जाते हैं, इसलिए किसी को बनाने की कोशिश मत करो, अपने आप बनने की कोशिश करो। संसार में जो कुछ भी होता है केवल बनाना होता है, और परमार्थ में केवल बनना होता है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न तसम प्रतिष्ठा। जो यह संसार दिखाई दे रहा है, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही है या उससे अलग है? दिखने मात्र से जब इस दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद की बात आती है, तो ध्यान लगाने की प्रक्रिया में जो हम लोग जन्मजात बाहर अंदर से बाहर की ओर जाने की प्रवृत्ति बनी हुई है, जब आप ध्यान लगाते हो, साधना के मार्ग में चलते हो, तो वहां यही बात सिखाई जाती है कि अंदर से बाहर की ओर न जाकर के बाहर से अंदर की ओर आने की कोशिश करो। यही तो है ध्यान में। और आप क्या करते हो? अभी तो आंखें खुली है, और सबसे ज्यादा बाहर ले जाने वाले हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू के द्वारा बता दिया, ये सब पराई वस्तुओं में जाने का जिसका स्वभाव है, परागात्मा, परांची, पराग, पराग का अर्थ क्या? परागात्मा प्रत्यगात्मा दो है, तो कश्चित धीर प्रत्यगात्मा न मैच्छत। कोई कोई धीर व्यक्ति प्रत्यगात्मा की ओर चल पाते हैं। प्राय हम लोगों का स्वभाव किधर है? बाहर की ओर जाने की, हमारी प्रकृति ऐसी है। व्यतृणत स्वयंभू, व्यतृणत का अर्थ किया कि स्वयंभू उस ब्रह्मा ने मानो हम लोगों का हिंसन किया, हम लोगों के साथ बड़े हिंसा वाला व्यवहार किया। अपने आप को बाहर की ओर ले जाना यही अपनी आत्महत्या है, अपनी हिंसा है। ईशावास्य परिषद में नहीं पढ़ते, ये के चात महानोजना आत्महत्यारा। तो आत्महत्यारा कौन है? आत्मा की ओर प्रवृत्त न होकर के अनात्मा की ओर चलना ही आत्महत्या है। आत्मा की तो हत्या हो नहीं सकती, तो आत्मा के लिए प्रयास नहीं करना और अनात्मा की तरफ प्रवृत्त होने का नाम ही आत्महत्या है। तो अब जो ये ज्ञानेन्द्रिया है, नाम तो ज्ञानेन्द्रिया है, लेकिन हमें ज्ञान किसका होता है? विषयों की ओर जाने से। इन पांच ज्ञानेन्द्रियों में सबसे भयंकर, जबरदस्त यदि कोई बाहर की ओर ले जाने वाली इंद्रिय है, तो वह है नेत्र, आंखों। आंख से जो कुछ भी आप देखते हो ना, वो वस्तु अपने से बहुत दूर लगती है, और जब उस वस्तु को नजदीक में लाते हो, छूते हो, तो तोगिंद्रिय के द्वारा वह विषय हमें समीप में लगता है। आंख से जिस विषय को हम दूर समझ रहे थे, उसी को छूने के बाद क्या महसूस करते हैं? नजदीक है। और उससे भी ज्यादा नजदीक लाना हो विषय को, तो कहां जाना पड़ेगा? जिह्वा से चाटो, देख लो ये कैसा है। पहले तो देखा, फिर छुआ, छूने के बाद चखा, और चखने से पहले उसके गंध भी आने लगती है। नजदीक मिलाने से मालूम पड़ेगा, कोई तो तीव्र गंध वाले तो दूर से भी मालूम पड़ जाता है इसे, लेकिन जब कोई खाने की चीज मुंह में डालते समय, इसलिए इस दोनों की जो है ना बड़ी नजदीकी रखी है। अच्छा है, तो नाक इधर कहीं होते, मुंह इधर, तो जो आता वही डालते चले जाते। लेकिन डालते समय हमें यहां से संदेशा मिलता रहता है कि अच्छी चीज है या बुरी चीज है। तो विषय को दूर बताने वाली इंद्रिय आंख, और ज्यो ज्यो विषय नजदीक आते, उसमें पहले तुगिंद्रिय, फिर रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, और उससे भी अत्यधिक सबसे नजदीक समीपता का बोध कराने वाले यदि कोई इंद्रिय है, तो उसका नाम है श्रोत्रेन्द्रिय। कान बंद करके सुनो। जब आप आवाज सुनते हो, तो कान के माध्यम से जो शब्द आपके अंदर जा रहे हो, कहां पहुंचता है? बोलते नहीं, अंदर मालूम पड़ा, यहां गया, ये ऐसा बोलता है, बहुत हृदय पर चोट मारता है, मर्माहत करता है। कहां चोट लगी? सारी प्रतीति के जो केंद्र है, तो सबसे अत्यधिक नजदीक इसलिए जब हम नेत्र बंद करते हैं तो अपने आप को सुनते हैं, और जब हम आंख खोल देते हैं तब दूसरे चीजों को देखने लग जाते हैं। इसलिए सुषुप्ति में जाने के बाद आप अपने आप से मिलते हो। आंखें बंद हो गई तो सम्मेलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति, सम्मेलन हो गया ना, सम्मेलन का मतलब है सम्यक मेलनम सम्मेलनम। आंखें जब दोनों बराबर मिल जाती है उसके बाद नहीं किंचिदस्ति, अब कुछ भी नहीं है। आंखें खुली है, कैसा बिस्तरा है, कैसी चद्दर है, कैसा कमरा है, किसका कमरा है, मेरा है कि तेरा है। सोने के बाद उठा के आपको सड़क पे ले जाके रख देवे तभी पता नहीं है, लगता ही नहीं। सुषुप्ति काले सकले बिलीने तमो विभूत सुखरूप मेति। तो मोटी सी बात याद रखो, जागृत अवस्था में जितना हमारा जीव भाव दृढ़ होता है उससे जो वह ब्रह्म परमात्मा जो व्यापक है वह हमें परिच्छिन्न सा लगता है। स्वप्न अवस्था में थोड़े उसकी व्यापकता अधिक होती है, जागृत अवस्था में वस्तुओं के द्वारा संसार का निर्माण है, स्वप्न अवस्था में बिना वस्तुओं के ही संसार का निर्माण है जो तेजस पदार्थ के नाम से प्रसिद्ध है। हाथी घोड़े बंगले जो कुछ भी दिखता है किसमें, स्वप्न में मन के अंदर ही दिखता है, और सुषुप्ति में जाकर के तो न बनने वाला है न बनाने वाला है। तो ये माया सबलम ब्रह्म, माया के द्वारा चित्रित हुआ हुआ जो परमात्मा एक कागज के अंदर कलाकार चित्र बनाता है, राम जी हनुमान जी रावण लंका अयोध्या सब दिखा देता है किसमें, कागज में दिख तो रहा है सब कुछ। क्या उस कागज में कुछ बदलाव आया? सादा कागज था तब भी कागज था, कागज पे इतने सारे चित्र बन गए तब भी क्या है, कागज ही है। तो इस दृष्टांत से भी समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो बता दिया, चलता हुआ सांप भी सांप है और कुंडली मार करके बैठा हुआ भी सांप ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। इसी प्रकार से वह परमात्मा जब माया को लेकर के संसार को बनाता है तब भी वह मूल रूप से ही है, और मूला अज्ञान कह करके जब विचार प्रारंभ होता है तो वह मूल जिसके द्वारा ढक गया इसे उस अज्ञान का ही नाम रख दिया मूला ज्ञान। मूला ज्ञान का मतलब मूल संबंधी जो अज्ञान, वह मूला ज्ञान। कल इस बात पर विचार हुआ कि जिस संबंधी जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए उस वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है। ये सिद्धांत बिंदुकार लिखते हैं कि चिदभाष्यत्वेन लक्षणेन इदंकारास्पदानाम अपि देहेन्द्रिय मनसाम प्रति भासतो अहंकारास्पदत्वेन तद अविवेकात्। देखिए, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो अत्यंत प्रसिद्ध एव। इस मन की एक तरफ तो बताते हैं कि उस परमात्मा तक उसकी पहुंच नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं एषो अणु आत्मा चेतसा विदितव्य मनसैवानु द्रष्टव्यम्, और एक तरफ कह रहे यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विदमो न बिजानीमो। ये संस्कृति का उदाहरण है, मन की पहुंच भी है, मन से ही वह जाना भी जाता है और मन की वहां पहुंच नहीं है, ये भी श्रुति का ही उदाहरण है। अब इस मन को कैसे तैयार करना है, इस मन के द्वारा वो कैसे जानने के योग्य भी बनता है और नहीं भी जाना जा सकता है, क्योंकि उस मन की ही पहुंच नहीं हुआ। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो, मन का नाम आया है। सूर्यकांत मणि है ना, सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत मणि आप रख दो घास के ऊपर, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक आतशी शीशा होता है सूर्यकांत मणि की तरह चमकता हुआ, और उस शीशे के अंदर सूर्य के जो बिंब है उसके प्रतिबिंब से पड़ने वाले जो किरण, और वह जब सूर्यकांत मणि के ऊपर आरूढ़ हो जाए उससे फिर घास आराम से जल जाती है। घास जलाने वाले कौन है? सूर्य है। सूर्य घास को जलावे तो जिस पेड़ के नीचे घास हो और वह घास यदि न पनपे तो क्या बोलते, यहां पर धूप नहीं पड़ती इसलिए घास बढ़ नहीं रही है। घास को बढ़ाने वाला सूर्य भला घास को जलाए कैसे? तो वह सूर्य घास को जलाता भी है और उसी सूर्य से घास बढ़ती भी है। काम तो दोनों एक ही सूर्य से हो रहा है, लेकिन जलाने में सामर्थ्य वाला कब हुआ हो? जब उसके ऊपर आरूढ़ हुआ तब। बस इतना ही अंतर है। मन तो सबके पास कितना है? आप लोग हमेशा एक ही बोलते हो, अरे कुछ तो बदलाव लाओ। 40 किलो का एक मन, 40 शेर की 40 किलो, चालीस किलो का एक मन, और हम लोगों के मन में कितने किलो? अनेक जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार पड़े हैं। क्या बोलते हो, आज तो मेरा मन बहुत भारी हो गया, और जब कुछ उसके अंदर भड़ास हो निकल जाए तो क्या बोलते हैं, मन हल्का हो गया। जब मन भारी हो तब तराजू पे तोलना कि कितना वजन है, और जब हल्का हो जाए तब अंतर कर लेना। प्रतीति तो हो रही है। एषो अणु आत्मा चेतसा वेदितव्य, ध्यान निर्मथनाभ्यासात पाशम दहति पंडित, ये सब आता है। मन तो एक है लेकिन उसमें उठने वाली वृत्तियां अनेक हैं। मन के अंदर संसार के जो संस्कार हैं, पहले उन संस्कारों को परिमार्जित करने के लिए हमें शास्त्रीय संस्कारों की अर्जना करनी पड़ेगी, उसको अर्जित करना पड़ेगा। ये यहां बता रहे हैं कि ते न च शुद्धेपि आत्मनि दुखित्वादि अभिमानात्। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, ऐसे शुद्ध आत्मा में दुखित्व आदि, दुख जड़ता अर्थात अनात्मा के जो जो धर्म आत्मा में आरोपित हो जाते हैं, धर्मियों का तादात्म्याध्यास, धर्मों को लेकर संसर्गाध्यास जो होता है, ये संसर्गाध्यास ज्यादा भयंकर है। एक बात और याद रखना, ज्ञान नहीं होगा तो इतना नुकसान नहीं होगा। यदि आप ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे ना, इतना नुकसान नहीं होगा। रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं जानोगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन सांप को यदि रस्सी मान के चलोगे तो क्या होगा? बस आज मुझे लगता है यही आप लोगों के लिए पर्याप्त है। ये अतिरिक्त ज्ञान दे रहा हूं आपको, सिद्धांत बिंदु की बात तो चल रही है। रस्सी को सांप समझ के उठाओ तो आनंद आता है, पहले तो रस्सी ज्ञान हो गया, रस्सी है, अरे मैं इसी को सांप समझता था, देखो। और धोखे से कहीं सांप को रस्सी समझ के उठाओगे तो क्या होगा, काट लेगा। बस यही समस्या है हम लोगों की, परमात्मा को परमात्मा के रूप में तो नहीं जान रहे, रस्सी को रस्सी के रूप में तो जान नहीं पा रहे, और सांप को हम लोग रस्सी मान करके चल रहे हैं। संसार कैसा है, सांप अलग कैसा रहा है, यही भगवान है, यही परमात्मा है। परमात्मा तो किसने देखा है, अरे ये तो सब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ये वेदांती लोग हमेशा उल्टी बातें करते हैं, जो दिखता है उसको बोलते झूठा और जो दिखता नहीं उसको बताते हैं सच्चा, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा देखने का अभ्यास है, प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही निर्भर है। सबसे श्रेष्ठ प्रत्यक्ष प्रमाण है, बाकी जितने भी प्रमाण हैं सब के सब प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रिय प्रधानता वाले प्रमाण हैं, बाकी प्रमाण बुद्धि प्रधान है। इसने संसार के संपूर्ण ज्ञानों को, आजकल के जो विश्लेषक हुए हैं तो अद्वैत वेदांती पढ़ते वेदांत हैं, लेकिन लोगों को सरलता से समझ में आ जाए तो उन्होंने सारे प्रमाणों को दो भागों में बांट दिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते एक है परसेप्शन और दूसरे है थॉट्स। एक चिंतन प्रणाली है और एक ग्रहण प्रणाली है। इंद्रियों के द्वारा जिसको ग्रहण करते हो उस भी हमें मस्तिष्क के अंदर चेतना के द्वारा बता देते। यहां पर आंखें हमें क्या बताती है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, आंखें से तो आप देखते हो, और बोध कहां पर हो रहा है, यहां पर। तो दो चीजों में ही उन्होंने पूरे ज्ञान को बांट दिया है, एक तो परसेप्शन और दूसरे थॉट्स। चिंतन प्रधान, संसार में अभी जो लोग प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर निर्भर है ज्यादा, वो चिंतन नहीं कर पाते, विचार की समर्थता नहीं है उनमें। ऐसे लोगों को यदि विचार करने के लिए कहो भी तो नींद आने लगती है, समझ नहीं पाते, क्योंकि उतने अभी ऐसी प्रक्रिया उनको पता नहीं है। ध्यान आदि जब करते हो तो इससे भी थोड़े थोड़े ग्रंथि खुलना शुरू हो जाते हैं, और ध्यान करते समय यही सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान का मतलब अपने आप में सिमटना, अपने को सुनना, अपने तरफ ध्यान देना। ध्यान देने के लिए मन को जो लगाना पड़ता है तो कभी ये तो बाहर की तरफ ध्यान देता है, और कभी अंदर की तरफ जब लाना है तो बाहर से अपने आप हटाना पड़ेगा, और बाहर सबसे ज्यादा ले जाने वाली आंखें हैं। आंखों के माध्यम से हट करके जैसे आंख बंद करोगे, अभी फूल देख रहे थे, आंख बंद किया, फूल यहां हाथ से छुआ, अब बोले ये फूल कहां है, तो बाएं हाथ रख करके बताते यहां है, ऐसे तो करोगे, और फिर उसको उठा करके लिया यहां पर, जिह्वा के द्वारा, नाक के द्वारा उस विषय का बोध हुआ। ये तो बाहर के वस्तुओं की बात है, जब अंदर की आवाज को आप स्वयं सुनने लगते हो तो उस समय जितनी नजदीकी का अनुभव आप करते हो उसी में मन शांत होने लगता है। ये मन तो है एक, वृत्तियां है अनेक, इस मन को संसार से हटा करके परमात्मा की ओर ले जाना है। जिस मन की पहुंच नहीं है उसी मन से उसी को जानना भी है, कैसे जानना, उसका क्या तरीका हो सकता है, ये सिद्धांत बिंदु में कह दिया। शास्त्रीयेण च ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानेन समूलस्य तस्य निवृत्तेः। शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा, शास्त्रीय ज्ञान क्या है, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान, न तो ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष मिलेगा ना ही आत्मज्ञान से मोक्ष मिलेगा, बल्कि ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, ये याद रखना है। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम जो है उसके द्वारा कैसे मोक्ष होता है आप सब जानते भी हो, फिर उसी का विचार कल करेंगे कि शास्त्रीय ब्रह्मात्म ज्ञान, ब्रह्मात्मिक ज्ञान क्या है। हरिओम।